चाहत ने अब जॉब करने के बजाय पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बारे में सोचा। अपनी माँ और नानी को श्रद्धा के साथ छोड़कर चाहत कॉलेज आई थी। वो पूरे 2 महीने बाद कॉलेज में कोई क्लास अटेंड करने के लिए आई थी, इसलिए उसे अंदर जाते हुए काफी झिझक महसूस हो रही थी। वहीं मोंटी भी उसके पीछे था। मोंटी आहान के साथ कॉल पर जुड़ा हुआ था। चाहत के पीछे जाते हुए मोंटी ने कहा, सर ये यहाँ स्टडी के लिए ही आई है, उनके हाथ में बैग है और क्लास की तरफ जा रही है। ये तो मुझे पता है कि ये एक स्टूडेंट है, तो हो सकता है कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाने गई होगी। तुम ऐसा करो, किसी बहाने से उसकी क्लास में घुसो और थोड़ी देर उसके साथ ही रहना, आहान ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। मोंटी की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो चाहत से उम्र में कोई थोड़ा ही बड़ा रहा होगा और दिखने में भी छोटा लगता था, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। उसने एक लड़के को पैसे देकर उसकी आईडी और बुक्स ले ली ताकि जरूरत पड़ने पर उसके काम आ जाए। मोंटी भी चाहत के पीछे क्लास में चला गया। चाहत की टीचर क्लास में आई, उन्होंने काफी टाइम बाद चाहत को वहां देखा तो उसे अजीब नजरों से घूरा और फिर अपने काम में लग गई। चाहत भी पूरी शिद्दत से क्लास अटेंड करने में लगी थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो सबसे अलग बेंच पर अकेली बैठी थी। दूसरी तरफ आहान अपने कामों में बिजी था। वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी होटल में आया हुआ था। आहान पिछले 10 मिनट से क्लाइंट का आने का वेट कर रहा था, तभी क्लाइंट का कॉल आया कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। आहान को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, फिर तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसने गुस्से में वहां रखा ग्लास तोड़ दिया। लोगों को क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे ऐसे ही बुला लेते हैं? इसकी हिम्मत कैसे हुई आहान ओबेरॉय का टाइम वेस्ट करने की? आहान ने गुस्से में कहा और तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया। उसने मैनेजर से कॉल पर कहा, मिस्टर दास, जब मिस्टर राघवानी को यहाँ मीटिंग के लिए आना ही नहीं था तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? राघवानी के साथ हम कोई प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। पीछे के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। उसके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम कब तक का है? अगर कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म नहीं हो रहा है तो कॉम्पेंसेशन देकर नए क्लाइंट ढूंढो। जी सर, मिस्टर राघवानी ऐसे इंसान तो नहीं है, जरूर किसी काम में अटक गए होंगे। मैं कॉल करके उनके ना आने का कारण पूछ लेता हूँ। शायद मिस्टर दास आहान को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो उम्र में लगभग 50 साल के थे और तजुर्बे में भी उससे काफी बड़े थे। आहान उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने मिस्टर दास की बात पूरी भी नहीं होने दी और उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मिस्टर दास, टाइम की वैल्यू होती है और जो इंसान टाइम की कद्र नहीं करता है, मेरी नज़रों में उस इंसान की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो नहीं आ सकते थे तो उन्हें पहले बताना चाहिए था। मैंने जो कहा है वही कीजिए, मुझे लोगों के बहाने नहीं सुनने हैं। अगर लोगों के बहाने सुनकर उन्हें सॉल्व करने में लग गया तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। आहान ने अपनी तरफ से आखिरी ऑर्डर्स दे दिए थे। वो मिस्टर राघवानी के साथ अब आगे कोई काम नहीं करना चाहता था। ठीक है सर, जैसा आपको सही लगे, मिस्टर दास ने धीमी आवाज में कहा। फिर आहान ने कॉल कट कर दिया तो वो उसके बताए काम पर लग गए। आहान की मीटिंग अचानक कैंसिल हो गई तो उसने वहां रुकना सही नहीं समझा। वो वहां से वापस जाने के लिए निकला। आहान मीटिंग रूम से कुछ कदम आगे निकला ही था कि उसे एक रूम से किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे जानी पहचानी सी लगी तो आहान के कदम वहीं रुक गए। अंदर एक आदमी की आवाज आई। उसने सख्त शब्दों में कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो दामिनी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शिवानी के होते हुए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो विजय ओबेरॉय थे, आहान के पापा, जो एक औरत के साथ थे। अंदर जो औरत मौजूद थी उसे आहान अच्छे से जानता था। उनकी आवाज सुनकर उसकी मुट्ठियां कस गईं। आहान को वहां खड़े होकर उनकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहां जिक्र उसकी माँ का हुआ था, शिवानी ओबेरॉय, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसी की वजह से वो विजय ओबेरॉय को झेल रहा था। आहान वहीं पर रुककर उनकी बातें सुनने लगा। अंदर दामिनी ने गुस्से में कहा, कब तक वेट करूं मैं उसका? हाँ, पिछले 20 सालों से उसका वेट ही कर रही हूँ और वो कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो आसानी से मरेगी भी नहीं और आप मुझे कभी नहीं मिलोगे विजय। दामिनी एक टीवी एक्ट्रेस थी जो लगभग 40 साल के करीब थी। वो विजय ओबेरॉय से 12 से 13 साल छोटी रही होगी। टीवी एक्ट्रेस होने की वजह से दामिनी काफी वेल मेंटेन्ड और खूबसूरत थी। लगभग 5 फीट 6 इंच हाइट, उस उम्र में भी बिल्कुल परफेक्ट फिगर और स्किन, जिसे उसने अलग अलग ब्यूटी ट्रीटमेंट के जरिए और भी अच्छा बना रखा था। दिखने में दामिनी बहुत ही खूबसूरत थी। किसी माने में वो टीवी सीरियल में लीड रोल भी करती थी, लेकिन अब उम्र होने की वजह से उसे लीड रोल मिलने बंद हो गए थे। वो साइड रोल जरूर करती थी, लेकिन फिर भी उसके किरदार हमेशा दमदार माने जाते थे। आहान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और मन ही मन कहा, ये इंसान बाज नहीं आने वाला। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी माँ मरेगी भी नहीं? लगता है इसके दिन भी पूरे हो गए हैं। आहान का मन किया कि वो अंदर जाकर दामिनी का मुंह तोड़ दे। वो वहां अंदर जाने भी वाला था, लेकिन विजय ओबेरॉय की आवाज सुनकर उसके कदम फिर से बाहर ही रुक गए। विजय ने दामिनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, बेबी, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, बस बहुत हो गया। अब मैं भी उसे और नहीं झेल सकता। अब कुछ सॉलिड करने का टाइम आ चुका है। शिवानी को रास्ते से हटना ही होगा। आयुष को तो मैं देख लूंगा, लेकिन आहान, बोलते हुए विजय रुक गए। आहान की वजह से ही वो अब तक दामिनी के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाए थे। आहान ने अपने बिजनेस के जरिए उनकी कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया था और ये बात सिर्फ वही जानते थे। विजय ने बात बदलते हुए कहा, मेरी बची कुची इज्जत और कंपनी इस वजह से है क्योंकि शिवानी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आहान को पता चला कि मैंने शिवानी को रास्ते से हटाकर तुमसे शादी कर ली है तो वो मुझे भीख मांगने तक मजबूर कर देगा और मैं उस लड़के को अच्छे से जानता हूँ। वो इस मामले में चुप नहीं बैठेगा। और आहान को बताएगा कौन? मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है जिससे शिवानी की मौत नॉर्मल हादसा लगेगी। पिछले 20 सालों से दूर रह रहे हैं तो एक साल और सही। तुम एक साल तक आहान के सामने ऐसा ड्रामा करना जैसे शिवानी के जाने का तुम्हें बहुत ज्यादा सदमा लगा हो। आहान तुम्हें अपने हाल पर छोड़ देगा, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। दामिनी ने अपना पूरा प्लान बताया। वो पहले ही बहुत वेट कर चुकी थी और अब उसके लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। विजय ओबेरॉय और दामिनी के बीच शादी को छोड़कर और कोई दूरियां नहीं रही थी, लेकिन समाज में दिखाने के लिए वो बिना शादी के भी नहीं रह सकती थी। दामिनी को कुछ भी करके अपना सरनेम ओबेरॉय चाहिए था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। विजय ओबेरॉय ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, वैसे प्लान काफी अच्छा है। सच कहूं तो मैं उस शिवानी से कभी भी प्यार नहीं करता था। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी, फिर बच्चे हो गए, लेकिन देखो ना, सही टाइम पर तुम मुझे मिल गई। डार्लिंग, आई लव यू सो मच और तुम्हारे लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। शिवानी तो वैसे भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो तो इतनी बेवकूफ है कि उसके सामने कोई मेरा पूरा सच लाकर रख देगा, फिर भी मुझे पति परमेश्वर मानकर मेरी ही पूजा करेगी। बस यही वजह है कि आहान अब तक उसे कुछ भी सच नहीं बता पाया।
और हमें आहान के इसी कमजोरी का फायदा उठाना है विजय। पहले हमने प्लान किया था कि आहान की शादी तुम्हारी बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ करवाकर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन पता नहीं वो लड़की भी एन मोमेंट पर कहाँ भाग गई। मैं नहीं चाहती हमारा ये प्लान अनसक्सेसफुल हो। मैं सब कुछ प्लानिंग के बाद ही तुमसे बात करूंगी। तुम तब तक मुझसे मत मिलना। बस यूं समझ लो कि शिवानी के दिन अब पूरे हो चुके हैं, दामिनी ने एक सांस में कहा और फिर विजय के करीब जाकर उसके होठों पर किस करने लगी। आहान को जितनी बातें सुननी थी वो सुन चुका था। उसके आगे वैसे भी उसे उनके इंटीमेट मोमेंट्स और कमरे से आ रही प्लेजर की आवाज़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आहान तुरंत वहां से चला गया और इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका विजय ओबेरॉय की जान लेने का मन कर रहा था। आहान अपनी गाड़ी में पहुंचा और गुस्से में स्टेयरिंग पर पंच मारते हुए कहा, मैंने समझाया था मॉम को कि उस इंसान से दूर रहे, पर उन्हें समझ नहीं आता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनकी, उन्हें वो इंसान भगवान नजर आता है, लेकिन उस शैतान ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मॉम की वजह से मैं उसे सड़क पर भी नहीं ला सकता। पर इस बार बात मेरी मॉम की लाइफ पर आई है। आई डेयर यू विजय ओबेरॉय, तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ूंगा नहीं मैं। आहान गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था और इस वक्त उसे तनु से बात करनी थी, इसलिए वो सीधे तनु के क्लिनिक जा रहा था। वहीं उसने विजय ओबेरॉय और दामिनी की आधी अधूरी बातें सुनकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी। लगभग 2 घंटे बाद विजय और दामिनी बेड पर थे और उनके कपड़े आसपास बिखरे हुए थे। दामिनी ने विजय के सीने पर सिर रखकर कहा, डोंट वरी विजय, आज तुम्हारी वाइफ की आखिरी रात है, या यूं कहूं कि उसकी जिंदगी के कुछ चंद घंटे बचे हैं। बस थोड़ा सा वेट कर लो, गुड न्यूज आने वाली ही होगी। कुछ ही पलों में दामिनी ने अपना प्लान बदल दिया था। पहले वो अच्छे से सब कुछ प्लानिंग के बाद ही शिवानी को मारना चाहती थी। अचानक ही उसने आज रात ही शिवानी को मारना तय किया, जबकि इन सब से अनजान आहान खुद के गुस्से को शांत करने के लिए तनु की क्लिनिक पर जा रहा था।